पृष्ठ संख्या 52, शीर्षक है बिंदु दूसरा मानव शास्त्रीय सिद्धांत एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी, इसके अंतर्गत शीर्षक है अ टायलर की जीववादी सिद्धांत एनिमिस्टिक थ्योरी। मानव शास्त्रीय दृष्टि से जीववादी सिद्धांत का प्रतिपादन टायलर महोदय ने किया। टायलर ने आदिम संस्कृति नामक महान ग्रंथ की रचना की, जिसमें आदिम मानव की संस्कृति का बड़ा ही वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत है। उन्होंने आदिम मानव की बुद्धि और स्वभाव का वैज्ञानिक अध्ययन करके ही जीववादी सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। टायलर इसी सिद्धांत के आधार पर धर्म की उत्पत्ति मानते हैं। इस सिद्धांत का अर्थ है वह विश्वास जिसके अनुसार विश्व की समस्त वस्तुओं में आत्मा या जीव का निवास है। इस सिद्धांत के अनुसार मानव प्रकृति की सभी वस्तुओं में आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करने लगता है। टायलर ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि मानव संस्कृति में एक ऐसा विशिष्ट स्तर आता है जबकि मानव प्रकृति के पदार्थों जैसे पहाड़, बादल, वृक्ष, नक्षत्र एवं जलप्रपातों में अपनी जैसी आत्मा का ही अस्तित्व स्वीकार करने लगता है। मानव अपने ही जैसा प्रकृति को देखने लगता है। अपनी ही चेतना का आरोपण विश्व की सभी वस्तुओं में करने लगता है। टायलर का यह भी कहना है कि संस्कृति के जिस स्तर पर इस जीववादी दृष्टिकोण का उद्भव होता है उसी समय धर्म की भी उत्पत्ति उसी स्तर पर होती है। ऐसी अवस्था में मानव अपने तथा जगत में प्राप्त जीवों के बीच सामंजस्य स्थापित करना चाहता है। साथ ही वह कुछ शक्तिशाली जीवों की आराधना अपनी सुरक्षा और कल्याण के लिए भी करना प्रारंभ कर देता है। आदिम मानव में धर्म की उत्पत्ति इसी धारणा में हुई है। अगला शीर्षक है आलोचना। इसके अंतर्गत शीर्षक है पहला, यह प्रारंभिक धर्म नहीं वरन प्रारंभिक दर्शन है। धार्मिक अध्ययन के क्षेत्र में इस मत का पर्याप्त रूप में महत्व रहा है और इस दिशा में इसका प्रभाव भी व्यापक कहा जा सकता है। परंतु जहाँ तक धर्म की उत्पत्ति के प्रश्न का संबंध है यह सिद्धांत संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। इसके आधार पर धर्म की उत्पत्ति की व्याख्या पूर्णतः नहीं हो पाती। जीववादी की सर्वात्म दर्शन की धारणा प्राचीन धार्मिक विश्वास के अंतर्गत नहीं आती, अतः इसे प्रारंभिक धर्म न कहकर हाफडिंग के कथा अनुसार अति प्रारंभिक दर्शन कहना चाहिए। अगला शीर्षक है दूसरा, आदिम मानव आराधना के लिए अनेक जीवात्माओं में से कुछ को ही क्यों चुनता है। जीववाद यह भी बतलाता है कि आदिम मानव कुछ शक्तिशाली जीवात्माओं की पूजा करता था। यहाँ उन मनोवैज्ञानिक कारणों को ढूंढना आवश्यक है कि क्यों आदिम मानव उनके जीवात्माओं में से कुछ एक को ही आराधना के लिए चुनता था। आराधना के प्रेरक तत्व क्या थे? अस्पष्ट है कि उसका उत्तर मानव शास्त्र के जीववादी सिद्धांत से न मिलकर मनोविज्ञान से मिल सकता है। पृष्ठ संख्या 53, शीर्षक है तीसरा, जीववाद में पराशक्ति को स्थान नहीं है। धर्म का अर्थ है मानव की किसी पराशक्ति के प्रति किसी भी रूप में प्रतिक्रिया या मानव की उस शक्ति के प्रति विश्वास एवं प्रतिक्रिया जो कि उसका भाग्य विधायक हो। परंतु जीववाद में ऐसी किसी पराशक्ति का बोध नहीं होता। जीववाद में तो अमानवीय विषयों में मानवीय शक्तियों का आरोपण मिलता है। उदाहरण के रूप में डॉक्टर जयवंश ठीक कहते हैं कि आदिम मानव को प्रवहमान जल प्रवात में किसी पराशक्ति के रहस्य का अनुभव न होकर यह अनुभव होता था कि जिस प्रकार हम अपनी इच्छा से कार्य करते हैं उसी प्रकार प्रपात भी अपनी इच्छा से प्रवहमान है। आदिम मानव प्राकृतिक वस्तुओं में किसी रहस्यमयता या पराशक्ति को न ढूंढकर केवल अपनी इच्छाओं और गुणों का आरोपण मात्र करता था। इस दृष्टि से जीववादी सिद्धांत के आधार पर धर्म की उत्पत्ति नहीं सिद्ध की जा सकती है। अगला शीर्षक है चौथा, जीववाद आदिम नहीं कहा जा सकता। हाफडिंग ने जीववाद को प्रारंभिक धर्म न कहकर प्रारंभिक दर्शन कहा है। यह बात पूर्णतः सत्य प्रतीत होती है क्योंकि जीववाद में आत्मा का प्रत्यय प्राप्त होता है। आत्मा का प्रत्यय एक विकसित प्रत्यय है। यह आदिम मानव की बुद्धि के परे ही कही जा सकती है। अविकसित बुद्धि में ऐसे उच्च विचारों का आना संभव नहीं प्रतीत होता। अतः जीववाद को आदिम कैसे कहा जा सकता है? संभवतः इसीलिए आधुनिक विचारक जीववाद के पूर्व की आदिम अवस्था से ही धर्म की उत्पत्ति स्वीकार करते हैं। अगला शीर्षक है पांचवा, पूर्व जीववादी सिद्धांत प्री एनिमिस्टिक थ्योरी की मान्यता। धर्म के इतिहास से यह पता चलता है कि जीववाद के पूर्व ही एक दूसरा सिद्धांत प्रचलित था जिसे मानववाद कहते हैं। इसके अनुसार माना एक निर्जीव अद्भुत और व्यक्तित्व शून्य पदार्थ ही आदिम मानव का आराध्य था। अतः इस पूर्व जीववादी सिद्धांत के आधार पर जीववाद को धर्म की उत्पत्ति का कारण नहीं माना जा सकता। अगला शीर्षक है बिंदु ब, प्रेत सिद्धांत द घोस्ट थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रवर्तक स्पेंसर महोदय हैं। इनके मतानुसार आदिम मानव प्रारंभ में अपने पूर्वजों की पूजा प्रेत आत्मा के रूप में करता था। इसी से धर्म की उत्पत्ति हुई। आदिम मनुष्य की यह धारणा थी कि उनके पूर्वजों का अस्तित्व मृत्यु प्राप्त करने के बाद भी प्रेत आत्मा के रूप में रहता है और प्रेत के रूप में वे निवास करते हैं। उनकी यह भी धारणा थी कि प्रेतात्मा के रूप में उनकी शक्ति बढ़ जाती है और वे अप्रसन्न होने पर क्षति भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए उनको प्रसन्न रखने के लिए आदिम मानव यज्ञ बलि तथा पूजा आदि की क्रियाएं भी करता था। आदिम मनुष्यों के इन क्रियाकलापों से पूजा पद्धति तथा कर्मकांड का विकास हुआ, जिसमें धर्म की उत्पत्ति में सहयोग मिला। इसका प्रमाण इस रूप में दिया जा सकता है कि आज भी अनेक समुदायों में प्रेत आत्मा का भय बना हुआ है और उसको प्रसन्न करने के लिए आधुनिक युग में भी पूजा, हवन आदि की क्रियाएं की जाती हैं। स्पेंसर के अनुसार प्रेत आत्माओं की पूजा ही धर्म का प्राचीनतम रूप है। इस प्रकार की धार्मिक प्रेरणा के पीछे स्पष्ट है कि भय की भावना काम करती है, साथ ही पूर्वजों से अपनी कामना की सिद्धि प्राप्त करना भी आदिम मानव का लक्ष्य कहा जा सकता है। स्पेंसर के अनुसार जीववाद धर्म का प्रारंभिक रूप नहीं कहा जा सकता। वास्तव में जीववाद प्रेत सिद्धांत पर ही आधारित है, क्योंकि जीववाद में सर्वात्म भाव इसी प्रेत सिद्धांत से प्रकट हुआ जान पड़ता है। यह तथ्य इससे भी स्पष्ट होता है कि जीववाद में किसी विशिष्ट जीवात्मा की पूजा इसलिए होती थी कि उस आत्मा में विशेष शक्ति है और वह मानव को क्षति भी पहुंचा सकता था। पृष्ठ संख्या 54। अगला शीर्षक है आलोचना। इसके अंतर्गत शीर्षक है पहला, धर्म जटिल मानसिक क्रिया है। प्रेत सिद्धांत धर्म का एक संकीर्ण आधार प्रस्तुत करता है। वास्तव में धर्म प्रथा या संस्कार से उत्पन्न हुआ नहीं जान पड़ता। प्रेत सिद्धांत पूर्वजों की पूजा और कर्मकांड के आधार पर धर्म की उत्पत्ति मानता है, परंतु धर्म केवल विशिष्ट विचार, भाव और संवेग के कारण ही प्रकट नहीं होता। इसमें अनेक अन्य मानसिक तत्व वर्तमान रहते हैं, इसलिए धर्म एक जटिल मानसिक क्रिया है। प्रेत सिद्धांत धर्म के उन तत्वों की व्याख्या नहीं कर पाता, केवल संस्कार, कर्मकांड तथा प्रथा के आधार पर ही धर्म की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती। अगला शीर्षक है दूसरा, धर्म में मनुष्य ईश्वर पर निर्भर करता है। प्रेत सिद्धांत में प्रेतात्मा मनुष्य पर निर्भर है। प्रेतात्मा की आराधना को धर्म मानना भ्रमपूर्ण है। धर्म में तो मनुष्य ईश्वर पर निर्भर करता है, जबकि प्रेत सिद्धांत के अनुसार आत्मा मनुष्य पर निर्भर करती है। जेवंश ने ठीक ही कहा है कि प्रेतात्माओं को ईश्वर के समान नहीं माना जा सकता। व्यक्ति का विश्वास होता है कि ईश्वर उसकी कामनाओं की पूर्ति कर सकता है। प्रेतात्मा की पूजा तो केवल भय से त्राण पाने के लिए ही होती थी। वह इतनी शक्तिशाली नहीं कि इच्छाओं की पूर्ति कर सके। अगला शीर्षक है तीसरा, प्रेत सिद्धांत व्यापक नहीं है। स्पेंसर ने प्रेत सिद्धांत के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि प्रेतात्मा की पूजा व्यापक रूप से सभी आदिम समाजों में पाई जाती है, परंतु जहाँ भी पूर्वजों की आत्मा में विश्वास प्रचलित है, वहाँ मृत पूर्वजों की पूजा नहीं की जाती। उदाहरण के लिए मध्य ऑस्ट्रेलिया निवासी आदिम जाति के हैं और वे पूर्वजों की आत्मा में विश्वास भी करते हैं, परंतु उनकी आराधना नहीं करते। अगला शीर्षक है चौथा, प्रेतात्मा की आराधना का प्रारंभ जीववाद से ही हुआ है। यद्यपि स्पेंसर जीववाद को प्रेत सिद्धांत पर ही आधारित मानते हैं, परंतु कुछ आलोचकों का कहना है कि प्रेतात्मा की पूजा के पहले प्रकृति के विभिन्न रूपों में व्याप्त जीवों की पूजा अवश्य प्रचलित रही होगी। इससे सिद्ध होता है कि प्रेत सिद्धांत जीववाद से ही फलित हुआ है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि प्रेत सिद्धांत से धर्म की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती। अगला शीर्षक है बिंदु स है टोटमवाद। इस मत के समर्थकों में डब्ल्यू रॉबर्टसन स्मिथ तथा जेवंस का नाम प्रसिद्ध है। इसके अनुसार टोटमवाद आदिम धर्म है और इसी से धर्म की उत्पत्ति मानी जा सकती है। टोटमवाद का अर्थ है वह आदिम धर्म जिसमें आदिम जातियां अनेक प्रकार के पशुओं, पेड़ पौधों, यहाँ तक कि जड़ वस्तुओं को भी समस्त जाति का जनक मानती है। टोटम पशु या वृक्ष की जाति माना जाता है और उसके साथ आदिम मानव अपनत्व का संबंध स्थापित करता था। यही नहीं, आदिम मनुष्य टोटम के प्रति आदर एवं श्रद्धा का भाव प्रकट करता था। उन लोगों की धारणा थी कि उनका विकास टोटम से ही हुआ है। वे टोटम को अपने वंशजों का प्रतीक समझते थे। टोटम का बोध व्यक्ति नहीं वरन जाति से होता है। आदिम मानव की प्रत्येक टोली अपने टोटम से ही आबद्ध रहती थी और वही टोटम उस टोली के प्रतीक के रूप में जाना जाता था। पृष्ठ संख्या 55। उसी से उसे विशिष्ट नाम भी प्राप्त होता था। ये टोटम जातियां अपने अपने टोटम को अपनी टोली का संरक्षक भी मानती थी और उनकी रक्षा भी करती थी। यदि किसी जाति या टोली का सांप टोटम हो तो वह जाति समझती है कि सर्प टोटमी को सांप कभी नहीं काटेगा और अन्य व्यक्तियों से सांप उस जात के व्यक्ति की रक्षा करेगा। टोटमवाद में यह भी देखा जाता है कि प्रत्येक जात का सदस्य एक सामान्य पूर्वज की संतति माना जाता था, जिससे उस जात के सदस्यों के बीच भ्रातृत्व स्नेह तथा मैत्री दिखाई देती थी। उस जात का प्रत्येक सदस्य अपने टोटम को पवित्र मानता था। अधिकतर वे अपनी जात के पशु का मांस भक्षण नहीं करते थे, परंतु विशेष उत्सवों पर टोटम पशु की बलि दी जाती थी और सभी सदस्य मिलकर नित्य गान के साथ उस पशु का मांस प्रसाद के रूप में ग्रहण करते थे। बलि के समय टोटम पशु से क्षमा मांगना तथा बलि के पश्चात शोक प्रकट करने की प्रथा भी प्रचलित थी। मांस भक्षण से टोटमियों में टोटम पशु की शक्ति आ जाती थी। इस बलि प्रथा के आधार पर कुछ विचारकों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि इससे उच्चतर धार्मिक अनुभूति का विकास हुआ है। अंतः शुद्धि की धारणा तथा पाप के लिए प्रायश्चित की भावना भी परिलक्षित होती है। टोटम को कुछ लोगों ने सामाजिक व्यवस्था की अपेक्षा धार्मिक व्यवस्था माना है। इसी आधार पर कहा जाता है कि टोटमवाद आदिम धर्म है और इसी से धर्म की उत्पत्ति हुई है और सभी धर्मों को टोटमवाद की स्थिति से ही गुजरना पड़ता है। अगला शीर्षक है आलोचना। इसमें पहला है टोटमवाद प्राचीन अवश्य है परंतु सर्वव्यापक नहीं। अत्यंत आधुनिक अन्वेषणों से टोटमवाद के समर्थकों की इस धारणा का खंडन हो जाता है कि सभी धर्मों को इस अवस्था से गुजरना पड़ा है। इसमें संदेह नहीं कि टोटमवाद प्राचीन अवश्य है परंतु इसकी सर्वव्यापकता सिद्ध नहीं की जा सकी है। बहुत सी अविकसित संस्कृति में पाए जाने वाले भी इस मत से अनभिज्ञ हैं। उदाहरण के लिए लंका के बेडोन अंडमान द्वीप समूह के लोगों के बीच तथा ब्राजील की आदिम जातियों के मध्य इस मत का प्रचलन नहीं है। मध्य ऑस्ट्रेलिया के आदिम जातियों के बीच टोटम की धारणा अवश्य प्रचलित है परंतु वहां टोटम की पूजा नहीं होती, अतः यह आदिम धर्म नहीं माना जा सकता। अगला शीर्षक है दूसरा, एमिल डुखाइयम द्वारा टोटमवाद की समाजशास्त्रीय व्याख्या। फ्रांसीसी समाजशास्त्रीय संप्रदाय के प्रमुख प्रतिनिधि एमिल डुखाइयम टोटमवाद को समाज और धर्म के लिए मूल आधार मानते हैं और टोटमवाद को आदिम धर्म घोषित करते हैं। टोटमवाद की नवीन व्याख्या प्रस्तुत करते हुए डुखाइयम कहते हैं कि सभी धर्मों में जीवन और जगत की संचालन शक्ति के रूप में एक रहस्यमय शक्ति की धारणा पाई जाती है। इनके अनुसार ऐसी शक्ति का प्रादुर्भाव व्यक्ति के मन में सामाजिक प्रभुत्व के कारण ही होता है। टोटम एक प्रकार का सामाजिक प्रभुत्व ही है, अर्थात टोटम की धारणा के मूल में जनजात के रीति रिवाज की शक्ति संवेग एवं विचार ही पाए जाते हैं और यही वास्तविक शक्ति के रूप में समाज के समस्त व्यक्ति के जीवन का नियमन करते हैं। व्यक्ति का वास्तविक ईश्वर समाज है, जिस शक्ति की वह पूजा करता है। वह वास्तव में समाज की ही शक्ति है। निष्कर्ष यह है कि टोटम एक सामाजिक शक्ति है, उसकी पूजा उसी शक्ति के रूप में होती आई है, इसलिए टोटमवाद ही आदिम धर्म है। पृष्ठ संख्या 56। यद्यपि डुखाइयम ने टोटमवाद की नवीन व्याख्या अवश्य प्रस्तुत की, परंतु चूंकि टोटमवाद का चिन्ह संसार के किसी भी भाग में नहीं प्राप्त होता, अतः टोटमवाद धर्म नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त जेवंस ने टोटमवाद के पूर्व की अवस्था का वर्णन करके यह सिद्ध कर दिया है कि टोटमवाद धर्म का आदिम रूप नहीं है, इसीलिए डुखाइयम का मत मान्य नहीं है। अगला शीर्षक है तीसरा टोटमवाद, धर्म व्यवस्था या समाज व्यवस्था। टोटमवाद के ऊपर आक्षेप किया जाता है कि यह धर्म के निकट होते हुए भी आदिम धर्म नहीं कहा जा सकता। इसे धर्म की अपेक्षा समाज व्यवस्था की संज्ञा प्रदान की जाती है। गैलवे महोदय के अनुसार टोटमवाद धर्म न होकर केवल सामाजिक रीति है, क्योंकि बलि के अवसर के अतिरिक्त टोटम पशु की आराधना नहीं की जाती और अन्य गोत्र में विवाह की प्रथा के कारण यह मत समाज व्यवस्था के रूप में ही प्रकट होता है। टोटमवाद को केवल समाज व्यवस्था कहने वाले के प्रति भी आक्षेप किया जाता है और कुछ तर्कों के आधार पर इसे धर्म व्यवस्था भी कहा जाता है। इसमें बिंदु अ है, टोटमवाद चूंकि समाज व्यवस्था है इसलिए इसे धर्म नहीं कहा जा सकता। यह तर्क युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता। ब है, टोटमवाद को धर्म कहा जा सकता है क्योंकि इसमें शुद्धता एवं अशुद्धता की भावना प्राप्त होती है और इस भावना को धर्म का एक मूल तत्व माना जाता है। स है, धर्म में रहस्यपूर्ण शक्ति का भरोसा किया जाता है। टोटमवाद में भी बलि पशु को रहस्यपूर्ण शक्ति मानकर उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाती है और टोटमी उस शक्ति का भरोसा करते हैं, अतः यह धर्म है। बिंदु द है, धर्म का सबसे बड़ा लक्षण टोटमवाद में यह भी मिलता है कि बलि पशु अंत में देवता का रूप ग्रहण कर लेता है और उसके प्रति टोटम जाति का विस्मय भाव या अवेशम बढ़ने लगता है। संभवतः फ्रायड ने इसी आधार पर टोटमवाद के आरंभ में अनेकेश्वरवाद और इसके पश्चात एकेश्वरवाद के विकास की कल्पना की। उदाहरण के लिए टोटम पशु देवताओं की सवारी के रूप में दिखाई पड़ते हैं और अंत में चलकर देवताओं में पशु का रूप भी देखा जाने लगा। अंत में स्वयं पशु ही देवता बन गया। बिंदु यह है, टोटमवाद को धर्म इसलिए कहा जा सकता है कि इसमें पाप के प्रति प्रायश्चित शक्ति के साथ तादात्म्य और जीव तथा जड़ के भेद की भावना पाई जाती है। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि टोटमवाद सामाजिक व्यवस्था के साथ ही धार्मिक व्यवस्था है।